आता है, ठीक है। इसलिए कि मोहब्बत अगर हद से आगे बढ़ जाए, यानी बहुत ज्यादा मोहब्बत गुनाह की पैदा हो जाए, तो ये इंसान को काफिर भी बना के छोड़ती है, काफिर बना के छोड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि किसी एक गुनाह का तस्करा हो रहा है ताकि हम उस गुनाह से बच जाएं और उसको छोड़ दें, बल्कि अपने ईमान की हिफाजत वाली बात है यहाँ पर। इसलिए कि जब खुसूसन नौजवान नस्ल के लोग इस गुनाह में पड़ जाते हैं, तो फिर वो ये नहीं देख पाते हैं कि जो अगला बंदा है उसके साथ मैं सिर्फ गुनाह कर रहा हूं, या कि वो बंदा मेरे ईमान से महरूम होने का सबब बन जाएगा। जैसे कि बहुत वाकयात हुए हैं कि किसी यानी जब गैर शरी ताल्लुकात की बात आती है, तो फिर आगे कोई मुशरिका औरत हो, कोई मुशरिक मर्द हो, कोई काफिर हो, कोई सो कॉल्ड क्रिश्चियन या ज्यू हो, राइट, और हत्ता के पड़ोसी मुल्क में हिंदुस्तान के अंदर कोई हिंदू हो, ठीक है। तो अब बंदा ये नहीं देखता कि मैं किसी हिंदू यानी लड़की से ताल्लुक बना रहा हूं, या लड़की ये नहीं देखती कि मैं किसी हिंदू लड़के से ताल्लुक बना रही हूं, ठीक है। बिकॉज फिर इतना गालिब आ जाता है इस गुनाह की तलब और मोहब्बत, इतनी गालिब आ जाती है कि फिर रिलीजन जो होता है ना, वो सेकेंडरी हैसियत, बल्कि वो उससे भी कम दर्जे का बन जाता है। तो ऐसा करने वाला शख्स जो है वो बिलाखिर अपने महबूब या अपने फ्रेंड की वजह से उसके फिर यानी आमाल को भी अपनाना शुरू कर देता है, उसके अकायद को भी अपनाना शुरू कर देता है, ठीक है, ताकि हमारा ताल्लुक जो है वो और गहरा हो सके और मजबूत हो सके, ठीक है। तो जब किसी हिंदू का अकायद को अपनाएंगे, उसके आमाल को अपनाएंगे, तो क्या ईमान बाकी बचेगा? ईमान तो नहीं बचेगा ना, काफिर हो जाएंगे ना उसके बाद। तो यहाँ पर ईमान की बात है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गुनाह है और उससे बचने के लिए हम चंद बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस गुनाह की शदीद नफरत पैदा करने के लिए सबसे पहले इसके जो दुनियावी सजा है उसकी तफसील बयान करी, और मुफस्सरीन ने उस तफसील को फिर और खोला कि ये सजा क्या है और क्या मतलब व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस गुनाह। फिर ये सारी तफसीलात करने के बाद हमने लियान वाली आयात कल पढ़ ली थी, जो कि आयत नंबर 6 से लेकर के 10 हैं। तो उसमें आपको पहले हम तारीफ बताते हैं, जो कि हम किताब से ही फॉलो करेंगे, 357 पेज के ऊपर, वॉल्यूम नंबर 6, मारिफुल कुरान। इसमें कहते हैं कि लियान और मुलायनत के मानी एक दूसरे दूसरे पर लानत और गजब इलाही की बदुआ करने के हैं। इस्लाह शरा में यानी शरीयत की इस्तिलाह में मियां और बीवी को चंद खास कस्में देने को लियान कहा जाता है। उसकी सूरत क्या है कि यानी उसकी शक्ल सूरत ये बनती है कि जब कोई शौहर अपनी बीवी पर जिना का इल्जाम लगा दे, या अपने बच्चे को कहे, यानी जो समझा जाता है कि जी ये इनका बच्चा है, इस मियां बीवी का बच्चा है, तो वो उसको कहे कि ये मेरे नुतफे से नहीं है, यानी ये मेरी औलाद नहीं है, और ये औरत जिस पर इल्जाम लगाया गया है उसको झूठा बताए कि नहीं ये मेरा शौहर झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये बच्चा हमारा ही बच्चा है, इसी का बच्चा है ये, राइट, तो और वो इसका मुतालबा करे कि मुझ पर झूठी तोहमत लगाई है, इसलिए शौहर पर तोहमते जिना की सजा 80 कोड़े जारी की जाए, ठीक है। तो बीवी ये कहे कि नहीं, शौहर जो है मेरे ऊपर झूठी तोहमत लगा रहा है, और झूठी तोहमत को क्या कहते हैं, हमने कल पढ़ा था, कजफ कहते हैं, कजफ, किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाना कि इसने जिना किया है, ठीक है। तो उसको फिर चार गवाहों के जरिए से, चार मर्द गवाहों जिन्होंने के उस फेल को बाकायदा देखा हो होते हुए, ठीक है, तो उन चार गवाहों के जरिए से प्रूफ करना होता है। और अगर वो चार गवाह आप नहीं लेकर के आ सके, तीन गवाह लेकर के आ गए, ठीक है, तीन गवाह लेकर आ गए जो कह रहे हैं कि हाँ हमने इस फेल को होते हुए देखा है, तब भी जिना की सजा नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, तब भी जिना की सजा नहीं, यानी तीन मर्द लेकर के आना इज ऑलरेडी अनइमेजिनेबल, ठीक है। तो शरीयत ने इसकी सजा को इस तरीके से तकरीबन इम्पॉसिबल बना दिया है, ठीक है, अल्लाह ताला की हिकमत है, वल्लाहु हकीमुन अलीम, राइट। जब भी तो इस तरह की जब सजाओं की का तस्कर आता है, तो अल्लाह ताला फिर अपनी हिकमत याद भी दिलाते हैं उसी सजा के जिक्र के साथ साथ, कि भाई अल्लाह ताला है ना वो अजीजुल हकीम है, वो जो है वो बात को समझने वाले हैं, तुम्हारी बात समझ में आ रही, डजंट मैटर, ठीक है, तुम बंदे हो, तुम अपने आप को बंदा ही समझो, तुम खुदा बनने की कोशिश ना करो कि तुम्हारे पास सारी की सारी हिकमतें एडवांस आ जाएंगी, ठीक है, तुम्हें टाइम लगेगा, हो सकता है तुम्हें कोई किसी बात की हिकमत समझ में आ जाए और हो सकता है ना समझ में आए, बट इट डज नॉट मैटर। तुम्हारा काम है बात को मानना, तुम बंदे हो, तुम यानी मोहताज हो, और मैं गनी हूं, मैं कादिर हूं। ठीक है, तो कहते हैं ना हम अंग्रेजी के अंदर जी, आई एम द वन हु कॉल्स द शॉट्स, राइट, आई एम द वन हु डिसाइड्स व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक है, तो हम जब इस तरह की बात करते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है जैसे हम खुदा की टोन में बात बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये टोन जो है ये खुदा को सचती है, ये अल्लाह को सचती है। अल्लाह इज द ओनली वन हु कैन क्लेम सच अ थिंग कि मैं डिसाइड करूंगा क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसा अल्लाह ताला ने एक सजा रखी है जिसके अंदर के चार मर्द गवाह होंगे तो फिर कोर्ट के अंदर उसको सजा दी जाएगी, और अगर नहीं होंगे, तीन भी लेकर के आ जाओगे, तो सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन फिर उसकी सजाएं मिली कैसे? वो फिर इकरार के जरिए से और दूसरे तरीकों से फिर। ठीक है, तो ये फिर एक शौहर और बीवी के दरमियान इस तरह का जब मामला हो जाए तो फिर इसमें लियान किया जाता है। अच्छा, तो कहते हैं कि जी, तो उस वक्त शौहर से मुतालबा किया जाएगा कि इल्जाम जिना पर, यानी जो तुमने अपनी बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया है, तो उस पर चार गवाह पेश करो। अगर उसने गवाह पेश कर दिए तो औरत पर हद जिना लगाई जाएगी। ठीक है, वही चार मर्द को गवाह जो के कहें कि हमने देखा है, तो फिर औरत पर जिना की हद लगाई जाएगी, यानी इसको रजम किया जाएगा। और अगर वो चार गवाह ना ला सका तो इन दोनों में लियान कराया जाएगा। क्या मतलब लियान कराया जाएगा? वो आगे कह रहे हैं कि अव्वल मर्द से कहा जाएगा कि वो चार मर्तबा उन अल्फाज से जो कुरान में मजकूर हैं ये शहादत दे कि मैं इस इल्जाम में सच्चा, मैं सच्चा हूं। ठीक है, और पांचवी मर्तबा ये कहे कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो यानी उसके साथ मर्द के साथ ही मामला किया जाएगा। अच्छा, अगर शौहर इन अल्फाज कहने से रुके तो उसको कैद कर दिया जाएगा कि या तो तुम अपने झूठे होने का इकरार करो या मजकूरा अल्फाज के साथ पांच मरतबा ये कस्में खाओ, और जब तक वो इन दोनों में से कोई काम ना करे उसको कैद में रखा जाएगा। अगर उसने अपने झूठे होने का इकरार कर लिया तो उस पर हद कदफ यानी तोहमते जिना की शरी सजा जारी होगी, यानी 80 कोड़े लगाए जाएंगे इस शौहर को, क्योंकि उसने इकरार कर लिया कि हाँ मैंने झूठी तोहमत लगाई थी अपनी बीवी के ऊपर। यानी बीवी के साथ भी ना इस तरह का मामला नहीं कर सकते हैं कि जी हाँ, तो ये तो जी मेरी बीवी है, मैं मुझे अल्लाह ने इसके ऊपर एक दर्जा बुलंद दिया है और मैं इसके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, मैंने इसको जो है वो कपड़े ला के दिए हैं, मैंने इसको जो है वो घर का इंतजाम करके दिया हुआ है, तो अब मैं जो चाहूँ इसके साथ करूँ, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी बीवी जरूर है लेकिन वो आपकी बंदी नहीं है। ठीक है, एक तो आपकी वो बांदी भी नहीं है वैसे भी, और वैसी और उससे बढ़कर वो आपकी कोई मखलूक कोई थोड़ी है कि आपने उसको पैदा किया हो, आप उसके खालिक हो, आप उसके मालिक हो। ठीक है, तो अपने आप को खुदा मत बनाए। अब बेशक शौहर है, शौहर को अल्लाह ताला ने एक मुकाम मर्तबा दिया है, लेकिन खुदा नहीं बनाया शौहर को। ठीक है, तो आप फिर बीवी के ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, वरना आपको फिर 80 दुर्रे खाने पड़ेंगे। अगर उसने अपने झूठे होने का इकरार कर लिया तो उस पर हद कदर चाहिए हो गया। और अगर अल्फाज मजकूरा के साथ उसने पांच मरतबा कस्में खा ली तो फिर उसके बाद औरत से उन अल्फाज में पांच कस्में ली जाएंगी जो कुरान में औरत के लिए मजकूर है। अगर वो कसम खाने से इनकार करे तो उसको उस वक्त तक कैद रखा जाएगा जब तक कि वो या तो शौहर की तस्दीक कर दे कि हाँ शौहर ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया है वो सच है, या अच्छा और अपने जुर्म जिना का इकरार कर ले, यानी सच है का मतलब कि हाँ मैंने वाकई जिना किया था, तो उस पर हद जिना जारी कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब उसने इकरार कर लिया ना, तो उस पर हद जिना जारी कर दी जाएगी, या फिर अल्फाज मस्कूरा के साथ वो पांच कस्में खाए, यानी औरत फिर पांच कस्में खाए। अगर वो अल्फाज मस्कूरा से कस्में खाने पर राजी हो जाए और कस्में खा ले तो अब लियान पूरा हो गया, जिसके नतीजे में दुनिया की सजा से दोनों बच गए। आखिरत का मामला अल्लाह ताला को मालूम ही है कि उनमें से कौन झूठा है, और झूठे को आखिरत में सजा मिलेगी। लेकिन दुनिया में भी जब दो मियाँ बीवी में लियान का मामला हो गया तो ये एक दूसरे पर हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। शौहर को चाहिए कि उसको तलाक देकर आजाद कर दे, अगर वो तलाक ना दे तो हाकिम इन दोनों में तफरीक कर सकता है जो बहुक्म तलाक होगी। ठीक है, जैसे कि कोर्ट में जाकर के अगर कोई औरत खुला दायर कर देती है ना, तो अब वो जज के ऊपर होता है कि वो उनके दरमियान खुला करवा दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जज की इंटरफेरेंस होगी और वो उनके दरमियान अलहदगी करवा देगी। बहरहाल अब इन दोनों का आपस में दोबारा निकाह भी कभी नहीं हो सकता। मामला बयान की यह तफसील कुतुब फिका में मजकूर है। ठीक है, तो लियान जब हो जाता है एक दफा, यानी पांच कस्में उसने भी खा ली और पांच कस्में इसने भी खा ली, तो अब जो है ना इनके दरमियान तफरीक हो गई, अब कभी भी इनके दरमियान निकाह नहीं हो सकता। जिस तरह से किसी बहन और भाई में निकाह कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो रजाई बहन भाई हो चाहे वो हकीकी बहन भाई हो, उसी तरीके से इन दोनों मर्द और औरत के दरमियान भी अब कभी निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया तरीका लियान का। और इसके बाद इसकी हिकमत कि भाई ये लियान का तरीका शरीयत में है ही क्यों, या कुरान में इसका हुक्म आया ही क्यों। ठीक है, पहले तो बात हो चुकी थी कि भाई जिना करने वाला जो है वो उसके साथ ये मामला होगा, और जो जिना की तोहमत लगाएगा उसके साथ ऐसे ऐसी कोड़े लगाए जाएंगे। तो फिर यहाँ पर एक नई सजा या एक नया तरीका लाने की जरूरत क्या थी, क्यों पेश आई। ठीक है, तो इसको फिर हिकमत लियान के तहत फरमा रहे हैं कि लियान का कानून शरीयत इस्लाम में शौहर के जज्बात और नफ्सियात की रियायत की बिना पर नाफिज हुआ है, क्योंकि किसी शख्स पर इल्जाम जिना लगाने का कानून जो पहली आयात में गुजर चुका है उसकी रूह से यह जरूरी है कि इल्जाम जिना लगाने वाला चार गवाह ऐनी पेश करे, यानी जिन्होंने आंखों से, ऐन कहते हैं आंख को, तो आंखों से देखे वाले चार गवाह पेश करे, और जो ये ना कर सके तो उल्टी उसी पर तोहमत जिना की हद जारी की जाएगी। आम आदमी के लिए तो ये मुमकिन है कि जब चार गवाह मुयसर ना हो तो वो इल्जाम जिना लगाने से खामोश रहे। ठीक है, और शरीयत यही चाहती है कि तुम इन मामलात को डिस्कस ना करो, अगर तुमने देखा भी है तो तुम चार गवाह लेकर के आओ तो उससे फिर तुम यानी हद जारी होगी, और अगर तुम चार गवाह नहीं लेकर के आ सकते तो तुम ना इस इल्जाम को तुम लगाओ ही नहीं, बल्कि तुम खामोश रहो, तुम खामोश हो जाओ उसके ऊपर। ठीक है, तो वो इल्जाम जिना लगाने से खामोश रहे। ठीक है, तो ये एक्चुअली शरीयत ना ये चाहती है, जिसकी के तफसील आगे आती है पुरानी आयात के तहत भी ये बात क्लियर होती है कि शरीयत चाहती है कि हम इन चीजों की की नशरो अशात मुआशरे में ना करें, अच्छा, ताकि तोहमत जिना की सजा से वो महफूज रह सके। यानी आम आदमी तो ये काम कर सकता है ना, लेकिन शौहर के लिए तो ये मामला बहुत संगीन है जब उसने अपनी आंख से देख लिया और गवाह मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि शौहर जो होता है उसकी ये घर की इज्जत होती है। ठीक है, और जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द की फितरत में गैरत रखी है। ठीक है, और शौहर जो होता है उसके अंदर तो गैरत अपनी बीवी के मामले में तो और भी ज्यादा होती है या होनी चाहिए। ठीक है, तो उसने ऐसा देख लिया और गवाह उसके पास मौजूद नहीं है, कहां से लेकर के आया भी चार बंदों को या तीन बंदों को अपने अलावा। अगर वो बोलेगा तो तोहमत जिना की सजा पाएगा, और अगर नहीं बोलेगा तो सारी उम्र खून के घोंट पीता रहेगा और उसकी जिंदगी वबाल हो जाएगी, जानते हुए कि ये औरत ऐसी है उसको सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी पड़ेगी, या ये कि वो तलाक दे खत्म करे मामले को। ठीक है, तो कैसी जिंदगी रह जाएगी फिर उसकी, यानी कोई सजा भी नहीं दिलवा सकता अपनी बीवी को, तो वो फिर सारी उम्र खून के घोंट पीता रहे, उसकी जिंदगी वबाल हो जाएगी। इसलिए शौहर के मामले को आम कानून से अलग करके उसका मुस्तकिल कानून बनाया गया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अलग से फिर इसका मामला किया। इससे ये भी मालूम हो गया कि लियान सिर्फ मियाँ बीवी के मामले में हो सकता है, दूसरों का हुक्म वही है जो पहली आयात में गुजर चुका है। कुतुब हदीस में इस जगह दो वाक़े जिक्र किए गए हैं, इनमें से आयत लियान का शान नुज़ूल कौन सा वाक़या है, इसमें आयम तस्वीर तफसीर के अकवाल मुख्तलिफ हैं। तो ये मामला जो है ना नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में दो मरतबा पेश आया। ठीक है, एक मरतबा हजरत हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी बीवी के दरमियान ये वाला मामला हुआ, और दूसरा एक दूसरे सहाबी थे हजरत उवैमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन उवैमर अजलानी नाम था उनका, और उनकी बीवी खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, यानी ये सब सहाबी थे, ये सब मोमिनीन थे, और इनके दरमियान ये मामला गुनाह वाला पेश आया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनके दरमियान फिर ये लियान फरमाया, और लियान हो गया। दोनों मामलात में ऐसा ही हुआ कि ना ना मर्द ने इकरार किया कि वो झूठ बोल रहा है कि उसकी बीवी ने ये गुनाह किया, और ना औरत ने इकरार किया कि मैंने वाकई ये काम किया है। ठीक है, तो फिर नतीजतन इन दोनों के दरमियान परमानेंट अलहदगी करवा दी गई। ठीक है, अब तफसील तो पूरी की पूरी लिखी हुई है और इसको पढ़ने में अच्छा खासा वक्त लगेगा, तो आपके मुताले के ऊपर इसको छोड़ते हैं। कुछ समरी इसकी मजीद ये है कि ये जरा गौर करें इस बात के ऊपर कि इस किस्म का जो जो फेल हुआ है, अब ये फेल जो है वो दुनियावी मामलात से ताल्लुक रखता है, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं ना फिजिकल टेंजिबल, ठीक है, यानी जिस चीज को आप अपने हाथों से फील कर सकें उसको टेंजिबल कहते हैं, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकें उसको टेंजिबल कहते हैं, ठीक है। जो ईमानियात वाली बातें होती हैं वो इनटेंजिबल चीजें होती हैं, वो फिजिकली परसीवेबल नहीं होती हैं, ठीक है। वो किसी की खबर के ऊपर आपने तस्दीक कर दी, ये ईमान होता है ना। तो आखिरत क्या है? आखिरत जो है वो कोई भी फिजिकली टेंजिबल चीज नहीं है, आप कभी भी आखिरत को देख नहीं सकते इस दुनिया की जिंदगी में, आंखों से भी नहीं, कानों से कुछ आखिरत के आवाज जो है वो यानी आखिरत की जहन्नम की आवाजें नहीं सुन सकते, जन्नत की आवाजें नहीं सुन सकते, ठीक है। तो ये सब कुछ ईमान के बेसिस पर है, लेकिन यहां पर देखें कि सहाबा कराम की जिंदगियों के अंदर ये ईमान वाली बात जो थी वो कितनी फिजिकली परसीवेबल थी, कितना उनके लिए ये यकीन का दर्जा इख्तियार कर गई थी, ठीक है। और होना भी यही चाहिए कि आखिरत वाला मामला जो है वो ईमान वालों के लिए सिर्फ तस्दीक की हद तक ना रहे कि हाँ भाई मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि मरने के बाद कयामत कायम होगी और उसमें ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, ये कहते हैं तस्दीक करना इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन आखिरत के बारे में अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशन ईमान वालों से ये है कि ये सिर्फ तस्दीक के दर्जे तक ना रहे बल्कि ये यकीन के दर्जे में हो, और यकीन का दर्जा ये होता है कि आप ऐसे उसको अपनी जिंदगी में ट्रीट करते हैं कि गोया कि वो एक फिजिकल रियलिटी है, फिजिकल रियलिटी, ठीक है, मुशाहिदा, राइट, फिजिकल रियलिटी वो चीज होती है जिसका कि आप मुशाहिदा कर सकें। तो आखिरत हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए कि गोया कि हम उसका मुशाहिदा कर रहे हैं, फिजिकल हमारे लिए चीज है। तो देखिए इस नयान के मामले में क्या हुआ कि एक घर के अंदर इस किस्म का मामला पेश आया और उसके ऊपर, अच्छा जरा आप लोग प्लीज चंद मिनट होल्ड कीजिएगा। जी तो ठीक है, तो सहाबा कराम के साथ क्या मामला हुआ कि ये एक ऐसी चीज हुई कि जिसको कि उनकी आंखें देख रही थी, ठीक है, उनके यानी जो जहन थे वो उसको परसीव कर रहे थे कि देखो ये मेरे साथ क्या हो गया है, ठीक है। लेकिन उनसे अल्लाह ताला ने क्या डिमांड रखी कि तुम बस यानी चार कस्में खाओ और पांचवीं मरतबा तुम ये कहो कि अल्लाह ताला की मेरे ऊपर लानत हो, ठीक है। और ये अल्लाह ताला की लानत जो होती है ये कोई आपको नजर भी थोड़ी आ रही होती है, ये तो वक्त बताता है ना कि जी किसी शख्स के ऊपर अल्लाह की लानत जो है वो कैसे उसका इजहार हो रहा है, और इसका इजहार इस दुनिया के अंदर भी होता है और आखिरत के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये सारे मामला जो है ये ईमान की बेसिस पर है, नबी रसूलुल्लाह ने जो उनको ईमान सिखाया था तो उसकी बेसिस के ऊपर ही उन्होंने ये आमाल किया ना कि पांच दफा चार दफा जो है वो कस्में खाई, पांचवी दफा जो है वो अल्लाह ताला की दानत को अपने ऊपर यानी इन्वोक किया, ठीक है। तो इस यानी इतना करने के बाद जो है वो उनके दरमियान एक फिजिकल सेपरेशन करवा दी गई, उनकी जिंदगियों की तरतीब जो है वो बिल्कुल तब्दील कर दी गई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यानी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर के दुनियावी मामलात और ईमानियात का जो है वो आपस में इस तरह से इम्तिजाज हुआ कि लोगों की जिंदगियां जो है वो ईमानी बात की बेसिस के ऊपर इस तरीके से चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो इफ का मामला है तो फिर वो यानी ऐसा नहीं किया गया कि आपको कोई ना कोई तरीके से इसको प्रूफ किया जाए और फिर आपको जो है वो दुनियावी सजा दी जाए, बल्कि इसका मामला जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया गया और आखिरत के ऊपर इसका मामला छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इससे ना हमारे लिए भी एक सबक ये निकलता है कि अक्सर ऐसा मामला होता है कि हम अपने मामला का फैसला जो है वो इस दुनिया की जजा और सजा के जरिए से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं, रिश्तेदारों के साथ कभी मामला होते हैं, कभी इवन गैरों के साथ ऐसे मामला होते हैं कि जिनमें हम चाहते हैं कि जी उनको कोई फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा काम किया था, हम उनको कोई फिजिकल फायदा पहुंचाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि उन्होंने हमारे साथ कोई बुरा काम किया है और उसके नतीजे में हम उनको कोई फिजिकल नुकसान चाहते हैं कि पहुंचे लेकिन हम नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मामलात हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब ऐसा कभी मामला हो तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे ईमान का हमसे तकाजा ये है कि हम अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द भी कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि करना चाहिए, अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। अगर आपने शरीत हदूद के अंदर रह करके किसी को फायदा नहीं पहुंचा सके जिसने आप पे एहसान किया था, या शरीत हदूद में रह करके आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके जिसने आपके साथ बुरा किया था, तो आप इसके फिर पीछे ना पड़ जाएं, आप इसके पीछे अपनी जिंदगी को खराब ना कर लें, आप शरीयत की बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने फायदा पहुंचाया, अब आप उसको हलाल तरीके से फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो अब आप उसको कोई हराम फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शरीयत के अंदर जायज नहीं है। यानी हम करते हैं ना कि जी किसी को जिससे कि हमारी तबीयत बड़ी अच्छी फील कर रही हो, अब उसको खुश करना है जी, अब उसको खुश करने के लिए कोई हराम तोहफा देना शुरू कर दिया, उसको किसी हराम जगह के ऊपर उसको ले जाना शुरू कर दिया, या उसके साथ कोई हराम ताल्लुक बना लिया जो कि शरीयत में जायज नहीं है, ताकि वो बंदा खुश हो जाए बिकॉज उसने मेरे साथ फेवर किया है, तो मैं उसको अब वन वे और द अदर खुश करूंगा, राइट। और उसी तरीके से दूसरी साइड पर कि उसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, अब मैं उसको प्रॉपर जो तरीका होता है, जैसे यानी जो कानूनी तरीका होता है, उसके जरिए से उसको सजा दिलवाना। अब अगर कानूनी तरीके से आप सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं कानून तोड़ करके उसको सजा दिलवाऊंगा, या सजा यानी झूठ बोल करके उसको सजा दिलवाऊंगा। ऐसी चीज जो उसने नहीं करी होगी मैं वो चीज प्रोड्यूस करके ना उसको सजा दिलवाऊंगा, बिकॉज मुझे उसको सजा दिलवानी है, उसने गलत काम किया है, या मैं कानून को अपने हाथों में लूंगा और मैं खुद डायरेक्टली उसको सजा दूंगा, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, ये शरी हुदूद को तोड़ रहे हैं। तो ऐसा करने की एक ईमान वाले को जरूरत नहीं है, उसकी निगाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर उठनी चाहिए, की तरफ उठनी चाहिए, और उसको ये मामला अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत विल टेक केयर ऑफ इट। अल्लाह को किसी को इनाम देना भी आता है और अल्लाह को किसी को सजा देनी भी आती है। ठीक है, और अल्लाह उसको दुनिया में भी सजा देने पर कादिर हैं और आखिरत की सजा तो अल्लाह ने अपने जिम्मे लेके रखी है। अल्लाह विल टेक केयर ऑफ योर मैटर। ठीक है, तो ये लियान का वाला मामला इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उस शौहर के साथ बीवी ने ऐसा गलत काम किया, या आज के दौर में तो और भी यानी दूसरी तरफ का भी मामला हो सकता है, जैसे कि आजकल चूंकि ये जो दौर है ना ये लिबरेशन ऑफ वेमेन का दौर है। ठीक है, पहले ये दौर नहीं था। ठीक है, ना तो डिस्टेंट पास्ट के अंदर ये दौर था। अच्छा, खवातीन में तो 50 की कैपेसिटी रीच हो गई है, तो अगर आपको कोई जानने वाला आना चाह रहा हो और वो नहीं आ पा रहा है, या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कोई मैसेज पोस्ट कर रहा है जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी, तो उनको आप ये बता सकती हैं कि जो मेंस लिंक है उसके ऊपर वो क्लिक करके दाखिल हो सकती हैं क्लास में। ठीक है, तो बात ये हो रही थी कि ये मामला जो है वो फिर हमें अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये दौर जो है वो चूंकि लिबरेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का दौर है, ठीक है, ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का दौर जो था ना, ये पास्ट में कभी नहीं था, इल्ला के इसकी एक मिसाल वहां मिलती है जो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जब जो इनके फिरौन होते थे, तो वहां पर औरतों की एम्पावरमेंट की कुछ मिसालें मिलती हैं, जैसे क्लियोपेट्रा। ठीक है, तो क्लियोपेट्रा जो क्वीन थी, तो उसके पास ऐसी पावर्स मिलती हैं हमें किताबों में, पता नहीं उसमें हकीकत कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज माजी में ना एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाला वाली एक्सट्रीम में दुनिया नहीं थी, वहां पर जो है वो सबमिशन और सबजुगेशन ऑफ द वुमेन की एक्सट्रीम थी। ठीक है, लेकिन ये दौर ऐसा है कि जिसके अंदर दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर दुनिया को डाला गया है। ठीक है, तो इस दौर में ये बात भी होती है कि औरत जो है वो मर्द के ऊपर इल्जाम लगाए, औरत जो है वो मर्द को ऐसे एक्सप्लॉइट करे कि मुआशरा औरत को सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, यानी ये एक नया फिनोमिना है इस दौर का कि औरत जो है वो मर्द को ऐसे एक्सप्लॉइट करे कि सोसाइटी उसको सपोर्ट भी कर रही हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ भी मुमकिन है कि जो है वो यानी लियान जो है वो फिर करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये सारा मामला फिर लियान का मुकम्मल हुआ। अब जो है हम वाकये इफ की आयात शुरू करते हैं, आयत नंबर 11 से है ये। ठीक है, सूरह नूर की आयत नंबर 11, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, शैतान जीम, इन्ना लदीना जाऊ बिल इफ के उसबतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल इमरिम मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किबरहू मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। तो वाकया इफ क्या वाकया है कि इफ पहली बात तो कहते हैं एक इंतहाई शदीद किस्म की तोहमत लगाना, बदतरीन किस्म का झूठ और इफ्तरा और बोहतान को इफ कहते हैं अरबी में। फक्कुन का जो लफ्ज है, नहीं फकुन के लफ्ज होते हैं, तो ये वाकया इस यूं था कि हजरत आयशा सिद्दीक रजील ताला अन और एक और सहाबी सफवान बिन मुअतल रजी अल्लाह ताला अन, इनके ऊपर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने ये जिना का फेल किया है। ठीक है, इसका पस मंजर इस तरह से था कि गजवाए बनी बनी अल मुस्तलक, ये एक गजवा था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर के काफिरों के साथ लड़ने के लिए निकले थे। तो इसके तहत जो सफर हो रहा था, तो उस सफर में हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में ना किसी एक ज़ौजा मोहतरमा को लेकर के जाते थे, उमूमी तौर पर सारी अज़वाज मुतहरात को लेकर नहीं जाते थे, तो ये एक तरह से बारियां लगती थी, तो इस दफा इनको लेकर के गए थे। तो 6 हिजरी का ये वाकया है, यानी हिजरत मदीना के छठे साल में ये मामला पेश आया। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो उस वक्त उनकी उम्र भी कम थी और उनका जिस्मानी डेल डोल भी जो है वो कम था, बड़ी हल्का इनका वजन था। तो औरतें सफर कैसे करती थी, औरतें जो है ना वो अपने ऊंट के ऊपर, जो उस औरत का ऊंट होता था, उस ऊंट के ऊपर एक हौदज रखा जाता था। हौदज जो है वो एक पर्दा दार किस्म का छोटा सा गोया के कुटिया या कमरा टाइप की चीज होती थी। ठीक है, जो आपने देखा होगा कभी ऊंटों, ये हाथियों के ऊपर बड़े सगीर के अंदर भी औरतों के लिए बकायदा छोटा सा ना एक कमरा सा बना देते थे, जो कि इंडिया में चूंकि हाथी होते हैं तो वहां पे हाथियों के ऊपर वो रखा जाता था, और अरब के अंदर चूंकि हाथी नहीं होते बल्कि ऊंट होते हैं, तो ऊंटों के ऊपर उसको रखा जाता था। तो औरत जो है वो उसके अंदर पूरी तरह मस्तूर होती थी, छुपी हुई होती थी। ठीक है, ये 6 हिजरी का वाकया है, और 5 हिजरी इससे पहले एक साल हिजाब के अहकामात नाजिल हो चुके थे। ठीक है, कि औरतें जो हैं वो अपने आप को मुकम्मल पर्दे में रखें। ठीक है, तो इस वजह से औरतें जो है फिर हौदज में सफर करती थी, इससे पहले जो है औरतें हौदज में सफर नहीं करती थी क्योंकि पर्दे के अहकामात ही नाजिल नहीं हुए थे, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ही नहीं आया था कि औरतें अपने आप को मुकम्मल तौर पर मस्तूर रखें। ठीक है, आयशा सिद्दीक़ा का एक हौदज था ऊंट के ऊपर, तो जब काफिला किसी जगह पे पड़ाव करता था खाना पीना खाने के लिए, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, तो हौदज को ऊंट के ऊपर से उतार करके नीचे रख दिया जाता था। ठीक है। तो इसी तरीके से आयशा सिद्दीकिया रज़ियल्लाहु अन्हा के हौदेज को उतार के नीचे रख दिया गया था। तो फिर लोग जो है वो अपने हाजत वगैरह से फारिग होते थे। कोई बाकायदा उस जमाने में कोई रेस्ट रूम वगैरह तो होते नहीं थे जैसे कि आज के दौर के अंदर रेस्ट रूम होते हैं, तो लोग वहीं से फारिग हो जाते हैं, ठीक है, अपनी जरूरियात वगैरह से। तो उस जमाने में क्या होता था कि जरूरियात से फारिग होने के लिए फिर जिस जगह पे लोग मौजूद होते थे ना, वहां से दूर जा करके जहां बिल्कुल वीराना होता था, तो इंसान फिर अपनी तसल्ली करके कि हाँ भाई यहाँ पर दूर दूर तक कोई लोग मौजूद नहीं है, तो फिर वो फिर भी किसी चीज की ओट में बैठ करके फिर वो यानी वॉशरूम वगैरह की जरूरियात से फारग होते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से मायशा तनान को भी जो फरागत की जरूरत पेश आई, तो वो इस तरीके से दूर गई और वहां पर ओट में फारिग हुई। और उसके बाद फिर मामला ये हुआ कि उनका उनके पास एक हार था, एक नेकलेस था, जो कि गालबन नबी अलैहिस्सलाम ने उनको तोहफे में दिया था, ठीक है। तो उस नेकलेस की जो है ना, वो बड़ी जाहिर है बड़ा कीमती नेकलेस, एक आम नेकलेस भी औरत के लिए कीमती होता है, और ये तो खुसूसी यानी इसकी वैल्यू थी। तो वो नेकलेस जो है ना कहीं टूट करके गिर गया, और रेत मिट्टी होती है और एक कच्ची जमीन होती है, तो इन्होंने तलाश करना शुरू किया, तो वो उनको मिला ही नहीं वहां पर, ठीक है। तो तलाश करते नहीं और उनको वो नेकलेस नहीं मिला, तो हुआ ये कि इसके अंदर इस तलाश में उनको देर हो गई, काफी देर हो गई, ठीक है। तो बिलाखिर वो जब नेकलेस मिल गया या नहीं मिला, बिलाखिर जब वो काफले की तरफ वापस पहुंची ना, तो उन्होंने क्या देखा कि काफला तो वहां से जा चुका है, कूच कर चुका है। तो हुआ क्या था कि जब काफले के कूच करने का वक्त हुआ, तो जो गुलाम या जो मर्द उस हौदज को उठा करके ऊंट के ऊपर वापस रखने वाले थे ना, तो उनको तो नहीं पता था कि आयशा सिद्दीका तरह जो है वो इतनी देर हो गई अभी तक वापस नहीं पहुंची। तो उन्होंने उसको उठाया और ऊंट के ऊपर रख दिया। अब उनको वेट का भी फील नहीं हुआ कि भाई अंदर तो कोई है ही नहीं, इसलिए क्योंकि पहले भी उस हौदज का वेट कोई ज्यादा था नहीं, आयशा सिद्दीका तरह जो है वो बहुत यानी छोटी भी थी, उनका वजन भी बहुत कम था, तो इस वजह से ना इन लोगों को वेट का एहसास नहीं हुआ कि अंदर तो कोई वो मौजूद ही नहीं है। उन्होंने उठा करके ऊंट के ऊपर रखा और काफला जो है वो रवाना हो गया, आगे चला गया। तो जब ये वापस आई तो काफला सारा का सारा जा चुका था। तो अब यहां पर इन्होंने बहुत कमाल होशियारी का सबूत दिया कि बजाय इसके कि परेशान हो जाती और यानी बेचैन होकर के जो है वो काफले को तलाश करना शुरू कर देती, काफले के पीछे भागना शुरू कर देती, इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस तरीके से भागना दौड़ना शुरू करूंगी ना, तो हो सकता है कि मैं काफले को भी नहीं तलाश कर सकूं और मैं अपना रास्ता ही भूल जाऊं, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि मैं यहीं पर जहां पर काफले ने पड़ाव डाला था, मैं यहीं पर बैठ के इंतजार करती हूँ काफले काफले का, यानी मैं यहीं पर बैठ के इंतजार करती हूँ। यकीनन जब नबी अलैहिस्सलाम अगली जगह पर पड़ाव डालेंगे, ठीक है, देखिए अल्लाह ताला ने कितनी मेहरबानी फरमाई है मुसलमानों के ऊपर कि 5 वक्त की नमाजें हैं, ठीक है। तो अब फजर की नमाज पढ़ के ये लोग निकले होंगे क्योंकि रात का वक्त था वो जब ये मामला हुआ था, तो अब थोड़ी ही घंटों के बाद जोहर का वक्त आ जाएगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ेगा जोहर के वक्त के लिए, ठीक है। तो वो रुकेंगे और नेचुरली जब उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे चेक करेंगे, क्योंकि आप ससुरम की आदत होगी कि ये अपनी बीवी को जो है वो ऐसे चेक किया कर के भी क्या हाल है, क्या खैरियत हो, सब ठीक हो, ठीक है। तो जब चेक करेंगे और मुझे नहीं पाएंगे, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम विल बैक ट्रैक, पीछे आएंगे इन्हीं कदमों के ऊपर, और जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो फिर वो मुझे पा लेंगे, क्योंकि एक लॉजिकल सी बात है कि भाई कहाँ गई ड्यूरिंग द जर्नी, तो आयशा सिद्दीक उतर के नहीं जा सकती ना, क्योंकि लोग देख लेते। तो फिर वो इसका मतलब है कि जहां पीछे हमने कयाम किया था वहीं पर वो लॉस्ट हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से वो मुझे तलाश करते हुए यहाँ पहुंचेंगे, अगर मैं कहीं इधर उधर गई तो उनको तलाश करने में मुश्किल होगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को अपनी चादर में लपेटा और वहीं पर बैठ गई। अब थोड़ी देर में उनके ऊपर नींद का गलबा हुआ और सो भी गई, चादर उन्होंने ओढ़ी भी थी। दूसरी तरफ कुदरत ने यह सामान किया, देखिए उन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं, कुदरत ने यह सामान किया। देखें ये सारे मामलात अल्लाह ताला के तरफ से किए हुए थे, अल्लाह ताला इस उम्मत को बहुत कुछ सिखाना चाह रहे थे, ठीक है। तो आयशा तआला का हार्ट टूट करके गिरा, ये हार्ट के कैसे टूट के गिरा, अल्लाह की मर्जी से टूट के गिरा ना, और आज आपको तलाश करने में देर लग गई, फिर आप जो है यहाँ पे पहुंचे, काफला जो है वो उठ के चला गया। काफले वालों को दिल में ये ख्याल आ सकता था कि नहीं भी जरा चेक कर लें वाकई है कि नहीं है, लेकिन उनके दिल में ख्याल नहीं आया, अल्लाह ने नहीं डलवाया ख्याल, ठीक है। तो फिर अब अल्लाह ने मजीद मामला क्या किया कि कुदरत ने यह सामान किया कि हजरत सफवान बिन मुअतल सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खिदमत के लिए मुकर्रर किया हुआ था कि वो काफिले के पीछे रहें और काफिला रवाना होने के बाद गिरी पड़ी कोई चीज रह गई हो तो उसको उठाकर महफूज कर लें। इसलिए कि काफिले जब चलते थे तो बड़े काफिले हैं, चीजें गिर जाती थी, तो इस तरह से ना किसी को, एक या दो बंदों को पीछे छोड़ा जाता था कि वो कुछ दूर पहले या कुछ देर पहले से फिर उसी रास्ते के ऊपर आए, ठीक है, कोई गड़ी पड़ी चीज रह गई हो तो उसको उठा करके फिर काफिले वालों के पास ले आए। तो वो सुबह के वक्त इस जगह पहुंचे, अभी रोशनी पूरी नहीं थी, उन्होंने देखा कि कोई आदमी पड़ा सो रहा है। जब करीब आए तो हजरत आयशा सिद्दीका तआला को उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि उस वक्त आयशा सिद्दीका तआला के चेहरे के ऊपर वो चादर नहीं होगी, सरक गई होगी, या हो सकता है उन्होंने चेहरे के ऊपर चादर रखी ना ना हो। तो सफवान रज़ी अल्लाह अन्हु ने आयशा सिद्दीका तआला को देख लिया और पहचान भी लिया कि ये आयशा सिद्दीका तआला। कैसे पहचान लिया? देखें, लोग कहते हैं कि जी चेहरे का पर्दा नहीं है, तो इन्होंने क्यों पहचान लिया तो ये बात हर जगह लिखी हुई है, हर तफसीर के अंदर ये बात मौजूद है कि इसलिए पहचान लिया क्योंकि ये बचपन से आयशा सिद्दीका तआला को देखते थे और 5 हिजरी में जो पर्दे के अहकाम आए थे उससे पहले इन्होंने देखा हुआ था, तो इस वजह से ये पहचान गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 हिजरी के बाद से जो ये पहचान वाला मामला था ना वो खत्म हो चुका था, लेकिन ये क्यों पहचानते थे? 5 हिजरी से पहले देख चुके थे, इस वजह से पहचान लिया इन्होंने। तो इन्होंने इंतहाई अफसोस के साथ अपनी जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि ये एक मुसीबत ही थी ना कि नबी अलैहिस्सलाम की जौजा मुहतरमा ये काफिले से अलग थलग यहाँ पे मौजूद है, क्या अजीब गरीब किस्म की एक सिचुएशन होगी। तो उनको बहुत यानी परेशानी हुई उन्होंने, और मोमिन जो है वो परेशानी के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, कुरान का हुक्म है कि तुम पढ़ो। तो ये कलमा सिद्दीक तआला ने कान में पढ़ा तो उनकी आंख खुल गई, उन्होंने अपना चेहरा ढांप लिया। हजरत सफान तआला ने अपना ऊंट करीब लाकर बिठा दिया, यानी कुछ बात नहीं करी, इन्ना लिल्लाह के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपना ऊंट ला करके बिठा दिया। हजरत सिद्दीका तआला उस पर सवार हो गई और खुद ऊंट की नकील पकड़कर प्यादा पा चलने लगे, यहां तक कि काफिले में जाकर के मिल गए। लेकिन दिन का वक्त था और देखने वाले देख रहे थे कि देखो ये क्या हो रहा है, ये ऊंट की नकील इस लड़के ने पकड़ी हुई है। सफान तआला जो है वो नौजवान साहबी थे और सदीका रज़ी अल्लाह तआला जो है वो ऊँट के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये बात पता लग चुकी होगी लोगों को कि जी सदीका रज़ी अल्लाह तआला जो है वो अपने ऊँट के अंदर मौजूद नहीं है, कहाँ गई, ठीक है, तो वो मौजूद हुई, फिर उसके बाद हो सकता है उतरी हो, फिर काफिले में गई हो, तो देखने वालों ने देख लिया कि आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला ही है जो कि उस ऊँट के अंदर मौजूद है। तो अब्दुल्ला बिन उबई, बड़ा खबीस मुनाफिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, उसको एक बात हाथ लग गई और कमबख्त ने वाही तबाही बकना शुरू कर दिया और बाज भोले भाले मुसलमान भी सुनी सुनाई उसका तस्करा करने लगे, जैसे हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला जो कि शायर रसूल के लकब से मशहूर हैं, हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह तआला अन जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन के करीबी रिश्तेदार थे, यानी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन से इनकी रिश्तेदारी भी थी, ये दोनों मर्दों में से थे, और हजरत हमना रजी अल्लाह तआला अन्हा औरतों में से, ये तीनों भी जो है ना ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक की बातों में आ गए और इन्होंने भी इस किस्म की गॉसिप शुरू कर दी, ठीक है, चहमगोइयां गॉसिपिंग आपस में शुरू कर दी कि हाँ ये तो लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला खराब है, ठीक है। तो तफसीर दुर्रे मंसूर में बहवाले इब्ने मरदविया हजरत इब्ने अब्बास के यही कौल नकल किया है कि एआनहु अय्युन अब्दुल्ला इब्ने उबई हसान व मिस्ताह व हमना, यानी अब्दुल्ला इब्ने उबई की इस बात में इन तीनों ने भी एआनत करी, मदद करी इसकी। तो ये जो मुनाफिक के बोहतान का जब चर्चा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे सख्त सदमा पहुंचा, सिद्दीक आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी बहुत सदमा पहुंचा कि उनके खिलाफ इस किस्म की बातें हो रही, उनको अंदाजा ही नहीं था कि लोग किस किस्म की बातें करना शुरू हो गए, वो तो बिल्कुल ही यानी इस गुमान से महफूज थी कि ऐसा मामला चल रहा है, उनके तो जहन में ये बात नहीं थी। उनको तो एक दिन जो है वो किसी जो उनके साथ एक बूढ़ी उम्र की औरत थी उन्होंने बताया कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही हैं, फलाना क्या बात कर रहा है और फलाना क्या बात कर रहा है, तो उस वक्त आयशा सिद्दीका को पता लगा। तो उनको तो इतना शॉक लगा कि उनकी तो तबीयत ही खराब हो गई, उनको तो बुखार ही आ गया उस वक्त। यानी इतना उनके तो उन्होंने इस बात को अपने दिल के ऊपर लिया, और लेना भी चाहिए एक औरत को जब उसके खिलाफ उस किस्म की बात हो। आखिर हजरत आयश हजरत यानी अल्लाह ताला ने हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात और बोहतान बांधने या इसमें शरीक होने वालों की मजम्मत में मजकूरा बाला आयात नाजिल फरमाई, जिनकी तफसीर फिर आगे आती है। पुरानी जाब्ते के मुताबिक जिसका जिक्र अभी हद गज़ब के तहत में आ चुका है, तोहमत लगाने वालों से शहादत का मुतालबा किया गया। ठीक है कि भाई चार गवाह लेकर के आओ, तुमने ये तोहमत लगाई है कि नऊज़ बिल्लाह ये गुनाह हुआ है, तो वो कैसे चार गवाह लेकर के आते? उन्होंने तो ऐसी कहना शुरू कर दिया था, बेबुनियाद सी बात थी, तो गवाह कहाँ से लेकर के आते? तो नतीजा ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहमत लगाने वालों पर शरई जाब्ते के मुताबिक हद कज़फ जारी की, हर एक को 80-80 कोड़े लगाए गए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अब्दुल्ला बिन उबई के ऊपर भी ये हद जारी करी, क्योंकि उसने तोहमत लगाई थी, असल जो ओरिजिनेटर था वो वही था। तो उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली ये हद जो है वो दो दफा जारी फरमाई, दोहरी हद जारी फरमाई, यानी उसको 80 जो है वो 160 कोड़े लगाए गए। और जो मिस्ताह हमना और हसान रज़ियल्लाहु तआला अन सहाबी थे, तो इनके ऊपर भी ये यानी हद जारी फरमाई गई, उनको भी 80-80 कोड़े लगाए गए। मोमिनीन ने तौबा कर ली और मुनाफिकीन अपने हाल पर कायम रहे। ठीक है, तो ईमान वालों के ईमान की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको तौबा की तौफीक दे दी, उन्होंने तौबा कर ली, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल भी कर लिया। और जो मुनाफिकीन थे तो वो वैसे ही रहे, उनको बेशक सजा भी मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुनाह से तौबा नहीं करी। ये उनकी मुनाफिकत का ये उनको सजा थी कि उनको तौबा की तौफीक ही नहीं मिली, क्योंकि झूठ बोलते थे ना, और अल्लाह ताला को धोखा देते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते थे। युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, राइट? तो जो इतना बड़ा गुनाह करता है, झूठ वाला गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है, और उसमें भी अल्लाह से झूठ बोलना, अल्लाह के रसूल से झूठ बोलना और नेक लोगों से झूठ बोलना, ये उस झूठ की इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो इससे जो है ना फिर तौबा की तौफीक छिन जाती है, तो मुनाफिकीन ने तौबा नहीं करी। अच्छा, अब हम ये आयात देख लेते हैं और फिर इसके तहत कुछ और बातें भी करके फिर हम शिकार खत्म करेंगे और कल फिर इंशाल्लाह अगले मौजू को लेकर चलेंगे। उम्मीद है कि ये मुकम्मल हो जाएगा आज। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लदीन जाओ बिल इसके उस्बत मिनकुम, ये लोग जो तुम्हारे पास ये बोहतान लेकर के आए, ये इल्जाम लेकर के आए, ये तुम में से एक छोटा ग्रोह था। उस्बा कहते हैं ग्रोह को, तो ये एक छोटा ग्रोह था, यानी अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि ऊपर से तुम अपने आप को मुसलमान कहता था ना, तो इस वजह से तुम में से ग्रोह में अल्लाह ताला ने इसको भी शामिल किया, क्योंकि ये ऊपर से अपने आप को मुसलमान कहता था। और बाकी तीन जो थे वो वाकई मुसलमान थे, तो टोटल कितने बन गए? 3+1=4। तो चार लोग थे जो कि तोहमत लगाने वाले थे। ठीक है, ला तहसबूहु शर्रन लकुम, तुम इस बात को कि तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जौजा के ऊपर जो इल्जाम लगाए ना, तो इसकी वजह से मुसलमान बहुत ज्यादा यानी अफसुरदा थे, रंज और अलम था इनके अंदर कि इतना घटिया काम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना ही रह गया था इल्जाम लगाने के लिए। तो बड़े बड़े सहाबी जो थे और दीगर सहाबा जो के इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो उनके ऊपर एक बहुत यानी रंजो अलम वाली कैफियत थी, बड़े मेंटली डिस्टर्ब थे ये सारे के सारे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम इस बात को इतना बुरा अपने हक में ना समझो, क्योंकि ये आजमाइश है, और आजमाइश जो है वो इस दुनिया के अंदर आती है, नेकों के ऊपर तो और भी ज्यादा आती है, लेकिन ये आजमाइश जो होती है वो उनके दराजात बढ़ाने के लिए होती है। बल हुआ खैरुल लकुम, तो ये आजमाइश तुम्हारे लिए बेहतर है एक्चुअली, क्योंकि इस दुनिया की तकालीफ और आजमाइशें परेशानियां तो टेम्प्ररी होती हैं, असल तो जो जो तुम्हें इसके बदले में जो तुम सब्र करोगे तो तुम्हें जो दराजात मिलेंगे वो तुम्हारे लिए खैर है। ठीक है, तो यही फरमा रहे हैं बल हुआ खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए खैर है। लिकुल्लि इमरिइन मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म, हर आदमी के लिए इनमें से वो है जितना उसने गुनाह कमाया। ठीक है, तो मक्तसबा मिनल इस्म, तो जितना जिसने गुनाह कमाया, क्या मतलब इसका कि ये जो बोहतान वाला मामला हुआ ना, इफ का मामला, इसमें तीन दर्जे के गुनाह हुए। तीन दर्जे के यानी लोगों ने गुनाह किए। सबसे बड़ा और सिवियर दर्जा क्या था कि अपनी जुबान से इल्जाम लगाया, ठीक है, ये सबसे सिवियर दर्जा था जिसके अंदर चार लोग थे। ओके, दूसरा दर्जा क्या था? दूसरा दर्जा ये था कि उन किसी ने इल्जाम लगाया तो नहीं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने इल्जाम लगाया उनकी यानी उनकी जो है वो तरदीद नहीं करी, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ वाकई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, देर मस्ट बी समथिंग फिशी, राइट, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो ये दूसरा दर्जा था, ये भी गुनाह है, ठीक है, कि तुमने हाँ में हाँ क्यों मिला दी उन लोगों के, बेशक तुमने खुद तोहमत नहीं लगाई लेकिन तुमने इस तोहमत के साथ एग्री क्यों कर लिया। और तीसरा दर्जा गुनाह का क्या था, जो कि इससे नीचे दर्जा का था, वो ये था कि कुछ लोग जो थे वो खामोश हो गए, ठीक है, खामोश हो गए का क्या मतलब कि उन्होंने तरदीद नहीं करी, ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो खुला झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, लुक हु यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम किसी फाहिशा औरत के बारे में बात नहीं कर रहे, तुम किसी जानिया औरत के बारे में बात नहीं कर रहे, तुम किसी फिल्म एक्ट्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे, तुम अल्लाह के नबी की जौजाए मुतहरा के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जरा संभल के बात करो, तुम जरा सोच समझ के बात करो, ठीक है, तो तरदीद करनी चाहिए थी। तो तीसरा दर्जा गुनाह का क्या हुआ कि तरदीद नहीं करी, बस खामोश हो गए। तो खामोशी भी, तो ऐसे मामलात के अंदर खामोशी एक्सेप्टेबल नहीं होती है, इज्जत वाले मामले, देखिए इज्जत अल्लाह के नजदीक कितनी अहम है और खुसूसन अल्लाह के महबूब बंदों की इज्जत कितनी अहम है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसकी तरदीद करो वरना तुम्हें गुनाह मिलेगा और गुनाह के ऊपर अजाब होता है, हर गुनाह का अजाब होता है, चाहे इस दुनिया में तुम्हें मिले चाहे आखिरत में मिले, अजाब जरूर होगा गुनाह का, ठीक है, तो गुनाह कोई मामूली चीज नहीं है, तुम गुनाह ना करो, तरदीद करो, ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। उस मामले के अंदर फिर तीन दर्जे के गुनाह हुए, सबसे अव्वल दर्जे के चार लोग मुर्तकिब हुए, दूसरे दर्जे के उससे ज्यादा लोग मुर्तकिब हुए और तीसरे दर्जे के उससे भी ज्यादा लोग मुर्तकिब हुए, लेकिन अल्लाह के ऐसे बंदे भी बहुत सारे थे कि जिन्होंने तरदीद करी, ठीक है, तो यही फरमा रहे हैं कि मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, और जिसने उठाया है इसका बड़ा बोझ, यानी किब्रहु सबसे बड़े दर्जे का जिसने कि गुनाह किया ना, यानी तोहमत लगाई, तो उसके लिए तो बड़ा अजाब है, ठीक है, तो उसके लिए बड़ा अजाब क्या हुआ कि जो ईमान वाले थे उनको जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी, उनको सबके सामने 80 दुर्रे लगाए गए, ईमान वाले थे, ठीक है, लेकिन ये उनका बड़ा अजाब दुनियावी एतबार से हुआ, फिर उन्होंने तौबा कर ली, आखिरत में उनका अजाब नहीं होगा, लेकिन जो मुनाफिक था उसको दुनिया में भी अजाब हुआ, 160 दुर्रे भी लगाए गए, और चूंकि उसने तौबा नहीं करी तो इस वजह से आखिरत में उसका अजाब होगा, तो इनको अजाबुल अजीम हुआ। लौला इज समिअतुमूहु वन्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरा वकालु हाजा इफ्कुन मुबीन, देखिए ये है एक्सपेक्टेशन अल्लाह ताला की, लौला क्यों नहीं, जब तुमने इसको सुना था, इस बोहतान को जब तुमने सुना था तो तुम्हें तो ख्याल किया मुमिनीन मर्दों और मुमिनीन औरतों ने, मुमिनून वल मुमिनात बिअन्फुसिहिम खैरा, ने अपने लोगों पर भला ख्याल किया, ठीक है, अनफुसहिम खैरा, देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिनीन मर्द और औरतों ने अपने बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया, बे अनफुसहिम खैरन ज़न्नल मोमिनून वल मोमिनातु बे अनफुसहिम खैरन, अपने बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया, क्या मतलब अपने बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया, भाई यहां पर जो तोहमत लगाई वो तो मोमिनीन ने दूसरे मोमिनीन के ऊपर लगाई ना, अपने ऊपर तो नहीं लगाई तोहमत, राइट, अल्लाह ताला अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए था, क्या मतलब, देखें यकीनन आपने ये बात सुनी होगी हदीस मुबारका का मफहूम कि ईमान वाले एक बदन की मानिंद हैं, एक बॉडी की मानिंद हैं, ठीक है, तो जब उस बॉडी के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, एक जिस्म वाहिद की मानिंद है, ठीक है, तो उस जिस्म वाहिद के अंदर मामला क्या होता है कि भाई अगर तुम जो यानी जैसे ऐसे ही है कि अगर आप अपने हाथ को तकलीफ दें, ठीक आप अपने हाथ को तकलीफ दें तो क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि भाई ये बंदा जो है वो हाथ को तकलीफ दे रहा है? नहीं, ये कहा जाएगा ना कि ये अपने आप को तकलीफ दे रहा है, इसलिए कि हाथ तो इस जिस्म का हिस्सा है, तो सिर्फ हाथ को तकलीफ नहीं दे रहा, अपने आप को तकलीफ दे रहा है। तो अल्लाह ताला मोमिनीन को ऐसे ही कंसिडर करते हैं, एक जिसमें वाहिद की माने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए था, यानी हर ईमान वाले के बारे में तुम्हें अच्छा गुमान रखना चाहिए था। तुमने बुरा बुरा गुमान करके अपने आप को अजियत पहुंचाई है, अपने आप को तुमने यानी जलील कर दिया है। वकालु हाजा इफ्कुन मुबीन, और तुमने तो ये कहना चाहिए था कि ये तो सरीह बुहतान है, तुम्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि ये बुहतान है, इसके अंदर सच्चाई नहीं है। ठीक है, अब ये जो बुहतान है, अब इसके ऊपर एक सवाल होता है, आगे तफसील में सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर आपको मौका मिले जरूर से पढ़िएगा। लेकिन इसके ऊपर जो सवाल पैदा होता है कि भाई ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बुहतान अजीम तुमको कह देना चाहिए था, तो इन लोगों ने तो देखा ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट? भाई इतना ही पता था ना कि ये अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, लेकिन हो सकता है ये जो चंद घंटे सफवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों जवानुल उमर हैं, राइट? और दोनों जो है वो तन्हाई में उन्होंने पता नहीं कितने घंटे सर्फ किए होंगे, तो इन्होंने देखा तो नहीं था, कोई वीडियो कैमरास तो नहीं लगे हुए थे कि देख रहे हो कि जी गुनाह नहीं हो रहा, राइट? तो फिर इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन अल्लाह ताला कैसे रख रहे हैं कि तुम ये बात कहो कि ये इफ्कुम मुबीन है, हालांकि अगर आप प्योर एम्पेरिकली इसको देखें, मैथमेटिकली इसको देखें, तो भाई यू कैन नॉट से समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन, आपने तो देखा ही नहीं है कि गुनाह नहीं हुआ है। तो हो सकता है हुआ हो सकता है ना हुआ हो, दोनों की पॉसिबिलिटी है ना, लेकिन हमारा परवरदिगार हमारा खालिक हमसे डिमांड क्या करता है कि नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखें अपनी औकात में रहो, ठीक है? ये तुमसे मैंने सवाल नहीं करना है आखिरत के दिन के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुमने जाहिर के ऊपर फैसला करना है, मैं तुमसे जाहिर का की 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 बात पूछूंगा, और जाहिर तुम्हारे सामने क्या है, जाहिर तुम्हारे सामने वाकया नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जाहिर तुम्हारे सामने ये है कि ये जो औरत है ये अल्लाह के नबी की बेटी है कि बीवी है, ये अल्लाह के महबूब सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी है और ये एक ईमान वाली है, ये बात तो तुम्हारे सामने क्लियर है ना, इसमें तो तुम्हें शक नहीं है कि पता नहीं अल्लाह की बीवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है कि नहीं है, राइट? सिद्दीक अकबर की बेटी है कि नहीं है, या ईमान वाली है कि नहीं है, राइट? इन तीनों बारे में बातों में तो तुम्हें शक नहीं है ना, ये तो तीनों बातें तुम्हारे सामने क्लियर है ना, तो जब ये तीनों बातें तुम्हारे सामने जाहिर हैं, अब तुम इन तीनों की बेसिस के ऊपर ये बात कहो कि ये इफ्क मुबीन है, ठीक है? तुम इसके मुकल्लफ नहीं हो, तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो कि तुम इसकी खोज करो, तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, तुम इसकी बात की गहराई में उतरो, ये इज्जत वाला मामला है, ये अफ्फत इफ्फत वाला मामला है, और किसकी इज्जत और इफ्फत? एक मोमिना और नेक औरत की, जिसके के नेक नामी भी मशहूर है इस मुआशरे के अंदर, ठीक है? तो ये चीजें काफी हैं तुम्हारे लिए, तुम इसको इफ्क मुबीन कहो, तुम्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए, तुम्हें तरदीद कर देना चाहिए इस बात की, ठीक है? तो ये हमारे लिए जो है ना, ये इसमें उसूल है कि ईमान वालों की इज्जत की हिफाजत, हम बैठ करके अपने ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो लोगों की इज्जतें छानना शुरू कर देते हैं जो ईमान वाले होते हैं। पहली बात तो ये कि इवन गैर मुस्लिम की भी इज्जतें उछालने की कोई इजाजत नहीं है, ठीक है? आपकी यानी गीबत का गुनाह जो होता है वो तो गैर मुस्लिम के साथ भी होता है, ठीक है? कि गैर मुस्लिम के बारे में भी उठ करके जो है वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाते हैं। भाई आपके पास और बेहतर काम नहीं है? यू डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू डू? अल्लाह का जिक्र करो, राइट? कुरान की तिलावत करो, नेकी की बातें करो, एक दूसरे की खैर ख्वाही की बातें डिस्कस करो, ये बैठ करके तुम क्यों डिस्कशन कर रहे हो कि उसने क्या किया होगा और उसने क्या किया होगा और ऐसा हुआ होगा और वैसा हुआ होगा। अगर तुम ये काम करोगे ना तो तुम्हारी जुबान जो है वो गुनाह में मुलव्वस होगी, और ये मत समझना कि तुम्हारा ये गुनाह जो है वो भुला दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, इस गुनाह की वजह से तुम्हें अजाब होगा, दुनिया में भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर बेबरकतियां आएंगी, तुम्हारी जिंदगी के अंदर परेशानियां आएंगी इस गुनाह की वजह से, और आखिरत का अजाब जो है वला عذاب الاخرت اکبر, وہ تو سب سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے آخرت کا عذاب. لولا جاؤ علیہ بأربعۃ شہداء, تو انہوں تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ چار چار گواہ لے کر کیا ہو اس الزام کے اوپر جو تم نے لگایا ہے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, پر جب جب وہ لوگ چار شہداء نہیں لے کر کے آ سکے تو وہ اللہ کے نزدیک کاذب ہیں. حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چار گواہ جو میں نے شرط لگائی ہے اس شرط کو پورا کرو. ٹھیک ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا, مجھے اس سے غرض ہے کہ میں نے جو شرطیں لگائی ہیں ان شرطوں کو تم نے پورا کیا کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ کین ڈکٹیٹ ایوری تھنگ دیٹ ہی وانٹس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈونٹ وری اباؤٹ ویدر اٹ ہیپنڈ اور ناٹ, آئی ڈونٹ کیئر اف اٹ ہیپنڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے, میں تم سے چار گواہ مانگ رہا ہوں, تمہاری ذمہ داری ہے چار گواہ لے کر کے آنا, یہ بات یاد رکھو, ورنہ تم کو میں جھوٹا ہی کہوں گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہیں ہوتی دنیا اور آخرہ میں, تو تم پر پڑتی اس پر چرچا کرنے میں کوئی بڑی آفت. یعنی جو ایمان والے تھے ان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل جو ہے وہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ ان کے ایمان کی وجہ سے, کیونکہ بھائی اندیکھی چیز کے اوپر انہوں نے تصدیق کری ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے اوپر, تو یہ ایمان لانا اتنا بڑا فیل ہے, اللہ کے نزدیک اس کی اتنی ویلیو ہے کہ یہ جو گناہ کیا ہے گناہ کی وجہ سے سزا بھی مل رہی ہے ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل بھی ان ایمان والوں کے اوپر ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نا نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے. بھائی ایمان لانے والی نیکی تو انہوں نے کری ہے نا, تو اس گناہ کی وجہ سے اس نیکی کو تو ضائع کیا جائے گا نا, کیونکہ وہ بہت بڑی نیکی ہے ایمان لے کر کے آنا. تو اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تم نے یہ جو چرچا وغیرہ کیا ہے نا ہامی ہامی لانی شروع کر دی, تو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی ایک بڑا عذاب آ جاتا. اس تلقونہ بالسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه حینا وهو عند اللہ عظیم, کہ جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر, یعنی اپنی زبانوں کو بھی تم نے اس میں انگیج کر لیا, اور تم کہنے لگے اپنے منہوں سے بے افواہکم ما لیس لکم بہ علم, جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں تھا, تم نے اس چیز کو وٹنس نہیں کیا تھا, تمہارے پاس چار شہید نہیں آئے گواہ نہیں آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے اس بات کا, اور تم نے ایسی جو ہے وہ یعنی اپنی زبانیں استعمال کرنی شروع کر دی, اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات, جیسے ہم گوسپ کو جو ہے نا بڑی ہلکی بات سمجھتے ہیں, بس جی ذرا دل لگی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو چلے باتیں کر لیں چند لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے, ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, بھائی اللہ کے نزدیک بڑی عظیم بات ہے. وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ, کہ کیوں نہ تم نے جب تم نے اس کو سنا تھا تو تم نے کہا ہوتا کہ ہم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم ایسی بات کو اپنی زبان پر لائیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان والی نعمت جو ہے اس کام کے لیے نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی گھٹیا باتوں کو اپنی زبان کے اوپر لے کر کے آئیں, اور یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اس بہتان عظیم والے لفظ کو, رائٹ, یعنی افکم مبین پہلے فرمایا پھر بہتان عظیم, یہاں پر اسی کو اس طرح سے ریورڈ کیا اللہ تعالیٰ نے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین, اللہ تم کو سمجھاتا ہے یعنی واعظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو کہ پھر نہ کرنا ایسا کبھی کام تم اگر تم ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایمان والے کنسیڈر کیے جاؤ تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. ٹھیک ہے, تو ڈانٹ پڑ رہی ہے, دیکھیں ڈانٹ پڑنا یہ تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے, اگر ڈانٹے نہ پڑے نا تو انسان کے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ غلطی کے اوپر متنبع نہیں ہوتا بلکہ غلطی کو بار بار ریپیٹ کر لیتا ہے. اس وجہ سے اگر ہمیں کہیں سے بھی ڈانٹ پڑ رہی ہو ہماری غلطی کے اوپر گناہ کے اوپر, چاہے بڑے سے پڑ رہی ہو, بڑے سے تو پڑنی بھی چاہیے ڈانٹ, رائٹ, لیکن اگر ہمیں کسی چھوٹے سے بھی ڈانٹ پڑ رہی ہو کسی نہ کسی شکل میں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہمیں اپنی تربیت کے طور پر ہی لینی چاہیے کہ یہ اس میں میری ہی بہتری ہے, میں نے آخر کو گناہ کیا تھا نا, اللہ کی نافرمانی کری تھی نا, تو اب تو اللہ تعالیٰ مجھے ڈانٹ پڑوا رہے ہیں, گویا اللہ میری تربیت کا انتظام کر رہے ہیں, تو یہ میرے لیے خیر ہی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں پر مجھے ڈانٹنا پڑے اور پھر قیامت کے دن मुझे अल्लाह ताला की डायरेक्ट डांट पड़े, जहन्नुम का अजाब हो, तो फिर मैं उसको कैसे सहूंगा। وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ کہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے پتے کی باتیں، یعنی آیات کو کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں اس بات سے، یعنی پسند کرتے ہیں فحش باتوں کی ترویج و اشاعت ایمان والوں میں، یعنی ایک مسلمان معاشرے میں فحش باتوں کی ترویج و اشاعت کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ دردناک، علیم کا مطلب بہت ہی المناک، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو خصوصاً اس کام کو کرنے والے لوگ ہیں، پرنٹ میڈیا والے، اخباروں کے اندر گھٹیا گھٹیا خبریں لے کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس قسم کا اگر کوئی گناہ کی پاسبلٹی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، ڈونٹ ایون ڈسکس اٹ۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اخباروں میں ان کی سچی یا جھوٹی خبریں لگاتے ہیں، تصویروں کے ساتھ لگاتے ہیں یا الفاظ کے ساتھ لگاتے ہیں، اور پھر ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ترویج اور اشاعت ہے بے حیائی کی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر کے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے جب یہ میسیجز پروموٹ کرتے ہیں، بل بورڈز اور ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے سے جو میسیجز پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر سیل فونز کے اوپر جو واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر اور نہ جانے کس کس قسم کے سوشل میڈیا چینلز ہیں، ان کے ذریعے سے بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، سارے کے سارے اس آیت کے حکم کے تحت آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نا آخرت میں تو شدید عذاب دے گا، لیکن اس دنیا میں بھی ایسا عذاب ہوتا ہے، بے شک ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، لیکن سسک سسک کر کے یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگیاں بہت کربناک ہوتی ہیں، اوپر سے سرخی پاؤڈر اور اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے دنیا کے سامنے بہت پیش کرتے ہیں، اندر سے گھٹ گھٹ کر کے مر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، ایسے ایسے جو ہے وہ رشتے کی پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، کہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ جیتا جاگتا جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے، جو کہ دور رہنے والوں کو نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن ان کو خود ان کو ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے قریبی لوگوں کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسی اذیت ناک زندگی سے گزر رہے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر عذاب علیم جو ہے نا وہ اسی شکل میں ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی آسمان سے آگ آ کر کے ان کو جلا کے بھسم کر دے، یہ دنیا کے اندر عذاب علیم نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر عذاب علیم یہی جو روحانی کیفیت میں اور جسمانی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا تکالیف، وہی دنیا کا عذاب علیم ہوتا ہے، اور آخرت کے عذاب علیم کے لیے پھر حدیثوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دیکھو تم یہ مت کہنا کہ جی مجھے تو یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے جو ہیں وہ بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں اور ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں تو مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے تو کوئی ان کے اندر برائی نظر نہیں آتی اور عذاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے، یہ اب یہ اس قسم کی باتیں مت کرو کہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ بھائی تمہیں نظر نہیں آتا، تم ہو ہی کیا چیز، تمہیں کتنا معلوم ہے، تمہاری کتنی نالج ہے، تمہاری کتنی یعنی کوریج ہے تمہاری آنکھوں کی، کتنا دیکھ سکتے ہو، ایک دیوار سامنے آ جائے تو تم اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ساری کی ساری باتوں کو۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پر اچھا اس کے بعد بس ایک آیت، چونکہ یہ رکوع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے مہربان، تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہارے اوپر فضل و کرم نہ کرتا تو پھر تو تمہارے ساتھ بھی اسی قسم کے معاملات ہوتے جو کہ ان کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 10 منٹ ایکسٹرا لے لیے ہم نے، لیکن کلاس آج کی ختم کرتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے میسیجز یہاں پہ آ رہے ہیں کہ 50 کی کیپیسٹی ریچ ہو چکی ہے، انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن تو نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو مینس کا لنک ہے اس کے اندر 50 کی کیپیسٹی ڈیفینیٹلی نہیں ہوئی ہے، تو اسی پر جو ریگولر اسٹوڈنٹس اگر آ جائیں، پھر باقی جو ایڈیشنل نئے لوگ ہیں وہ پھر ویمنز لنک کے اوپر آ جائیں، تو اس طریقے سے پھر انشاءاللہ 100 کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، ایک گروپ بنایا ہوا ہے ہم نے، ویمن کے لیے الگ واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اور مین کے لیے ایک الگ واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ آلریڈی اس کے اوپر سبسکرائب نہیں ہیں تو آپ اس کے के ऊपर सब्सक्राइब हो जाएं, उसका लिंक मैसेजेस के अंदर भेजा हुआ है, अगर किसी के पास नहीं है वो लिंक भी तो किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछ ले, यहीं पर पूछ लें, तो उसके ऊपर ही अनाउंसमेंट्स वगैरह भेजी जाती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी क्लासेस की उस उन ग्रुप्स के ऊपर ही भेजी जाती हैं। ठीक है, जज़ाकुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।